श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरा स्कंद और उसका भी 31वां अध्याय, जिसमें भगवान कपिल देव मां देवहूति के कुछ प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ये चर्चा श्रीमद् भागवत में, जैसे 11वें अध्याय स्कंद में श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद है, बहुत 24 अध्यायों में सबसे ज्यादा जो शिक्षा भगवान की सीधी उद्धव गीता के रूप में 11वें स्कंद में है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा भगवान का शिक्षा जीव के उद्धार के लिए कपिल देव का मां देवहूति को है। ये 10-12 अध्यायों से ज्यादा में इस शिक्षा का वर्णन है और ये महत्वपूर्ण शिक्षा एक नारी, एक माता देवहूति विश्व के कल्याण के लिए पूछ रही है। माता के लिए प्रभुपाद जी ने शब्द लिखा है, ग्लोरियस मदर ऑफ कपिल देव वॉज वेरी कंपैशनेट। प्रभुपाद का शब्द है कि कपिल देव की महान माता बड़ी करुणा और दयामयी थी। क्यों दयामयी और करुणामयी थी? क्योंकि उसने ऐसा प्रश्न पूछा है जिससे सब जगत के जीवों का कल्याण होगा, जो सबके अपने भले का तो दुनिया में सब सोचता है, लेकिन जो दूसरों के भले का सोचे वो परम वैष्णव और वो परम करुणामय और परम दयालु है। तो ये शब्द प्रभुपाद ने लिखा है। तो इस श्लोक को पढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि क्या प्रश्न मां देवती ने पूछा है जिसके उत्तर में कपिल देव ये कह रहे हैं। प्रश्न 3-4 हैं, उसमें से एक प्रश्न जिसका उत्तर अभी कपिल देव इन श्लोकों में दे रहे हैं वो प्रश्न ये है, विरागो येन पुरुषो, विरागो, राग विराग, विराग का मतलब वैराग, जिससे जीव को संसार से वैराग हो जाए। वैराग समझते हैं ना, प्रभुपाद शब्द का डिटैच्ड, अंग्रेजी में लिखा है डिटैच्ड। राग का मतलब होता है आसक्ति और वैराग का मतलब होता है त्याग। जीव को त्याग हो वैराग हो, और विशेष राग का एक और अर्थ है, विराग का एक अर्थ है विशेष राग। इसका मतलब जो संसार में आसक्ति है वो संसार से हटाकर भगवान में प्रीति में बदल जाए। संसार की आसक्ति को भगवत प्रीति में बदलना, इसका ये वैराग का ये भी अर्थ है और भक्तों के लिए वैराग का ये अर्थ है। ज्ञानियों के लिए अर्थ है संसार का त्याग और भक्तों के लिए वैराग का अर्थ है भगवान से प्रीति, विशेष राग। क्योंकि भक्ति के अंदर प्रेम समाया हुआ है, भक्ति का अर्थ ही है प्रीति। तो जिससे वैराग हो, भगवान सर्वतो भवेत, सबका सबके भले की बात कर रहे हैं सर्वत्र। वो भगवान और भगवान के भक्त जब बोलते हैं तो किसी देश काल के लिए नहीं बोलते हैं, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं बोलते हैं, उनका सार्वजनिक सबके लिए बोलते हैं, सार्वभौमिक सारे विश्व के लिए बोलते हैं और सर्वकालीन सब लोग सब समय के लिए बोलते हैं। उनकी बात एक समय के लिए नहीं होती है, एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होती है, एक देश के लिए नहीं होती है। भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम, ये नहीं कहते हैं कि भाई भारतवासियों का मैं ईश्वर हूं, नहीं, जगन्नाथ। तो भगवान के भक्त भी प्रभुपाद से जब कहा कि आप महाराज समदृष्टि कैसे हैं, आप तो क्रोध करते हैं, कुछ लोगों को तो आप रास्कल बदमाश बोलते हैं, तो आप महाराज समदृष्टि कैसे हैं? बोला मेरी समदृष्टि यह है कि भगवान के इस भगवत गीता के संदेश को मैंने पूरे विश्व में समदृष्टि से दिया, सबको समान समझ के सबको इसका अधिकार दिया, मेरी समदृष्टि ये है। तो साधु की समदृष्टि सबका भला करना है, ये तो वेदों के मंत्र है, सर्व सर्व सुखी भवत, सब सुखी हो, ये वेद भाषा है। ये तो मंत्र पढ़ते हैं वेद का ना, सर्वे भवंतु सुखी ना, तो ये वेद की भाषा है, ये भगवान की भाषा है, ये भगवान के भक्तों की भाषा है। इसका मतलब हमारा भी भक्ति में आने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम दूसरों का भला कैसे करें। और क्या कहते हैं, आचक्षवे जीव लोकस्य विवधा मम संसृतः। ये मां देवहूति कहती है, भगवान श्री कपिल देव, भगवान, अब मां अपने बेटे को भगवान कह रही है, पहचान रही है, बहुत विस्तार से कहते हैं, बहुत विस्तार से बताइए मेरे लिए भी और सामान्य जनता के लिए भी। अपने को सामान्य जनता में खड़ी करती है मां, ये मां की निम्रता है, भगवान की माता है, लेकिन कहती है नहीं मेरे और सामान्य जनता दोनों के लिए। तो ये जो भाषा है कि अपने को कभी भी साधु संत भक्त ऐसे नहीं मानता है कि मैं मुक्त हूं या कुछ हूं, मैं सबसे नीचे हूं। पति तपावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित न पाई व्यार। अब ये भाव है कि मैं सबसे ज्यादा पतित हूं, तो मां कहती है मेरे लिए और सामान्य जनता के लिए आप विस्तार से बताइए कि ये जन्म संसर्ति, ये जन्म मृत्यु का चक्कर कब से चल रहा है, कब तक चलेगा, क्यों चलता है। तो कपिल देव पूछते हैं ये क्यों बताऊं, क्या इसमें क्या माता जी आपको सुनने में इतना उत्सुकता है, आप ये क्यों, यही क्यों सुनना चाहती हैं। तो देवाती माता कहती है कि ऐसे दुख का वर्णन सुनने से, यह शब्द है सच कैलेमिटीज, बाय हियरिंग सच कैलेमिटीज, ऐसे दुख का, ऐसे कष्ट का, ऐसे ऐसे सामान्य लोग जो दुखी हो रहे हैं, वो जब इसके विषय में सुनेंगे कि कितना कष्ट का ये कार्य है, तो क्या होगा, उनके हृदय में वैराग उत्पन्न होगा, भौतिक भोग से उनका वैराग उत्पन्न होगा। तो ये प्रश्न है देवहूति माता जी का कि मेरे और सामान्य जनता को संसार में जन्म मृत्यु के दुख का विस्तार से वर्णन कीजिए, जिसको सुनकर हमारे को संसार के भोगों से वैराग उत्पन्न हो। और बहुत सुंदर बाद में माता जी कहती है, आप ही भगवान इन बेचारे जीवों को जो अनंत काल से जन्म मृत्यु के अंधकार में भटक रहे हैं, सूर्य की तरह आप प्रकाशमान होकर इनका उद्धार कर सकते हो। तो भगवान ने कहा कि ये तो इनका इच्छा है तब ये घूम रहे हैं। तो माता जी कहते हैं लगता है कि ये बेचारे थक गए हैं, दे आर फटीग्ड। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, फिर आज का श्लोक पढ़ता हूं। आप इस संसार की समस्याओं से थके हो के नहीं? नहीं, अभी तक कुछ संसार में कुछ भोगना, कुछ पाने की इच्छा है? हा? जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं हम दे पाएंगे, तब तक ये श्लोक हमारे कान के ऊपर से होता हुआ, सर से पीछे से घूमता हुआ बाहर चला जाएगा। हाँ, पहले हमको मालूम होना चाहिए कि भैया ये दवाई हम ले रहे हैं तो हमारा रोग क्या है, पता तो लगे। तो हम थक गए हैं कि नहीं हो गए संसार में? असल में भगवान हमको घुमाने के लिए इस दुनिया में लाए, लेकिन सब लोग भगवान की जय जयकार कर रहे थे, तो कुछ ने कहा कि तो हमारी जय जयकार कब करेंगे लोग। तो भगवान ने कहा वापस चलो, थोड़ी देर हम यहां रह के बैठते हैं, फिर आ जाएंगे। तो भगवान ने सोचा कि इनकी इच्छा ये है कि ये समझते हैं कि जैसे मैं सब चीज का मालिक हूं, इनके मन में मालिक बनने की भावना आ गई है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कुछ समय रहना फिर आ जाना। तो वो एक घर का मालिक बन गया, एक दुकान का मालिक बन गया, एक फैक्ट्री का मालिक बन गया, कई बार बना। आप जब थक गया है कि ये मुझसे चलती नहीं है, तब प्रार्थना करता है कि अब बहुत हो गया, अब ये नहीं चलता है। आप तो भगवान चला सकते थे, मैं समझा मैं भी चला लूंगा, लेकिन मुझसे चलता नहीं है। और भगवान कैसे चलाते हैं? शांताकारम भुजग शयनम। कौन करता है संसार का पालन? भगवान विष्णु। और उनका शांत आकारम भुजग शयनम, वह तो सोए हुए काम चलाते हैं। आप सोए हुए कुछ कर सकते? सोए हुए खा सकते? सोए हुए खा भी नहीं सकते, लाइन में खड़े होकर खाते हैं। तो भगवान तो ऐसे संसार चलाता है। आपका संसार चलाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, कभी इसके ऊपर विचार किया? तो थके हो तो ये भागवत का जो विभाग है, ये कपिल देव का उतने समझ में आएगा नहीं। अभी उत्साह है कि एक और राउंड करके देख लेते हैं, तो फिर ये उपदेश अंदर घुसेगा नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है कि जब तक आदमी संसार से बिल्कुल ऐसा दुखी होकर कहे कि अब ये जगह रहने की है ही नहीं, तब उसके हृदय में भगवान में आ भगवान की कथा सुनने में आसक्ति होगी। तो अभी हमको देखना चाहिए कि हमारा मीटर क्या कह रहा है। एक और मॉडल की गाड़ी और एक और फ्लैट बंबई में के वृंदावन में ही लेना है, तो इसका मतलब ये अभी तक ऊपर से गुजर जाएगा। अब सुन लीजिए क्या कथा है, ठीक है? तो ये जो श्लोक पढ़ रहे हैं, इन श्लोकों में हम और कोई नहीं, हम सब ये प्रार्थना करके आए हैं। ये प्रार्थना जीव आत्मा की अपनी मां के गर्भ में केवल मानव शरीर में, जब उसको मानव शरीर मिलता है और 84 लाख जोनियों में से किसी और जोनी में नहीं, केवल मानव के मां के गर्भ में जब जीव आता है तो उसकी चेतना विकसित होती है और उस गर्भ में स्थित वो जीव, मानव जीव, भगवान को अपने पास में परमात्मा के रूप में देखता है और उसकी ओर देखकर अपने दुखों से मुक्त होने की प्रार्थना करता है। तो ये हम सब ने की है। हम सब इस दुनिया में गर्भ में से पैदा होकर आए हैं कि नहीं है? तो फिर हम सब, ये हमारी प्रार्थना है, हमको भूल गई है। इसलिए कृष्ण भावना का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण से हमारा संबंध जो था उसको हम भूल गए हैं, उसको पुनः याद करके उसी काम में सेवा में लगना, यही कृष्ण भावना है। हमारा जो कृष्ण के साथ संबंध था, जो उन हमारा संबंध कृष्ण के साथ क्या था? जीवेर जीव आत्मा का स्वरूप ही ये है कि भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। इसको भूल के हम किस किस के दास अब बने हैं? जिस जिस के भी दास बने हैं उन सबको प्रणाम करके वापस कृष्ण के सेवा में लगना, ये कृष्ण भावना है। तो ये हमारी प्रार्थना हमने भगवान को की हुई है, किसी और की नहीं है, हमारी ही प्रार्थना है जिसको हम भूल गए हैं। इसलिए भागवत में ये रखी गई है ताकि हमको याद दिलाया जाए। शास्त्र और साधु, ये चैतन्य महाप्रभु का वचन है, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वत कृष्ण ज्ञान। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वत कृष्ण ज्ञान। इस दुनिया में माया के नशे में जो जीव है उसको अपने आप कृष्ण का ज्ञान हो जाए, ये संभव नहीं है। कृष्ण कृपा कही, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कृपा कहिला दिया, वेद पुराण, ये शास्त्र दिया। क्यों दिया? कि हम अपने आप भगवान के साथ जो संबंध है माया से छूट के नहीं जान सकते, इसलिए यह शास्त्र दिया। और विशेष रूप से भागवत तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं, ये तो भगवान का वांगमय स्वरूप ही है। तो ये भगवान हमको याद कराने के लिए आए हैं कि तुमने जो वायदा किया था उसको मत भूलो। तो हमारा वायदा है, ये श्लोक 10-12 श्लोकों में जीव आत्मा मानव मां के गर्भ में भगवान जो उनके संग में परमात्मा के रूप में बैठे हैं उसको प्रार्थना कर रहा है। और उस प्रार्थना में आज की प्रार्थना का ये श्लोक है और एक और श्लोक इसके बाद प्रार्थना का, एक और श्लोक, दो श्लोक और प्रार्थना के हैं और फिर कपिल देव आगे कहेंगे कि क्या होता है प्रार्थना के बाद। भगवान प्रार्थना सुनता है और फिर उसको वहां से मुक्त करता है गर्भ से, उसके बाद क्या होता है वो फिर कथा चलेगी। अब ये किसकी प्रार्थना है? हमारी प्रार्थना है, जीव की प्रार्थना है, मां के गर्भ में, मां के गर्भ में भी केवल मानव मां के गर्भ में और किसी में नहीं। तो उस प्रार्थना का आज का श्लोक पढ़ते हैं, यहां जो देख सकते हैं देखिए। पश्यात् अयम् धिषण्याननु साप्तवद्रिही शारीरिके दम शरीर्य अपरः स्वदेहे यत सृष्ट्या संतमहं पुरुषं पुराणं पश्य बहिर्दिचैत्यमेव प्रतितम्। अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा और तात्पर्य, अन्य प्रकार का शरीरधारी जीव केवल अंत प्रेरणा से देखता है, वो उस शरीर के ग्राह्य तथा अग्राह्य अनुभवों को से ही परिचित होता है। तो इस श्लोक में दो बातें हैं। पहली बात है कि दूसरे किसी भी जूनी में जब जीव जाता है तो उसको सिर्फ क्या लेना ग्रहण करना है क्या नहीं ग्रहण करना है, इससे ज्यादा कुछ पता नहीं होता। तो पहला दूसरे में, लेकिन मानव शरीर में जब जीव आता है तब उसकी चेतना विकसित होने के कारण वो इससे ऊपर भगवान की प्रार्थना कर सकता है अथवा अपने मन इंद्रियों को संयम में रखकर वापस बंधन से मुक्त हो सकता है। तो पहला भाग ये है, अन्य प्रकार के का शरीरधारी जीव, अन्य प्रकार का मतलब बाकी सब मनुष्य जीवन से अलग योनियों में, केवल अंतः प्रेरणा से, केवल अंतः प्रेरणा से मतलब उसके अंदर में जो चेतना है देखता है, वो उस शरीर के ग्राह्य तथा अग्राह्य अनुभवों से ही परिचित होता है। किंतु मुझे अभी ये 10 महीने, वैदिक भाषा में 10 महीने, चंद्र के महीने 10 मानते हैं जो गर्भ में शिशु रहता है। तो वो कहता है मुझे ऐसा शरीर प्राप्त है, ये जीव जब मानव शरीर को प्राप्त करता है तब कहता है मुझे ऐसा शरीर प्राप्त है जिसमें मैं अपनी इंद्रियों को वश में रखता हूं, मैं अपनी इंद्रियों को वश में रख सकता हूं और अपने गंतव्य को समझ सकता हूं, मुझे कहां जाना है यह भी मैं समझ सकता हूं, अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूं जिसकी आशीर्वाद से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है, मानव शरीर मुझे मिला है, और जिनकी कृपा से मैं उन्हें भीतर और बाहर देख सकता हूं, जिसकी कृपा से मैं उन्हें भीतर और बाहर देख सकता हूं। ये जीवात्मा की मां के गर्भ में प्रार्थना है। अब श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चेतना विकसित का पहले उदाहरण देते हैं। विभिन्न प्रकार के शरीरों के विकास क्रिया फूल के फलने से के समान है। फूल जैसे होता है ना, फूल कैसे होता है, जिस प्रकार फूल के विकास की कई अवस्थाएं होती हैं, कली में फूल होता है, विकसायमान फूल होता है, पूर्ण विकसित फूल तथा सुगंध और सुंदरता से परिपूर्ण फूल। अभी फूल कली में है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर कच्चा है, फिर पक्का है, फिर उसमें खुशबू आती है। तो ऐसे जैसे फूल विकसित होता है, इसी प्रकार क्रमिक विकास में 84 लाख योनियां होती हैं और निम्न योनियों से उच्चतर योनि में क्रमबद्ध उन्नति होती है। नीचे योनियों से दूसरे ऊपर, जैसे वृक्ष की जूनी है, ये भी जूनी है। इसी कार्तिक महीने में हमें मालूम है कि नल और कुबेर को दो अर्जुन वृक्ष बनना पड़ा था। तो वृक्ष की जूनी जो है, उस जूनी में चेतना सीमित, चल भी नहीं सकता है, वो तो अचल है, एक जगह पड़ा हुआ है, तो उसमें चेतना बहुत संकुचित होती है। तो उसके बाद पशु है, चल सकता है। तो ऐसे चेतना बढ़ती जाती है। और आप कौन सा जीव जानते हैं जिसकी चेतना बहुत बहुत बढ़ी हुई है मानव के अलावा, पहले नंबर का? गाय की चेतना बहुत बढ़ी हुई होती है, अपने घर में आ जाती है, कहीं भी जंगल में छोड़ो, अपने घर को पहचान के आ जाती है अपने आप। और कुत्ते की चेतना ठीक है, वो उसको वफादार कहते हैं, लॉयल्टी उसमें अच्छी है, लेकिन हाँ, आपने पहचान लिया, कितना समझदार है, आपकी जेब से भी केला निकाल सकता है। बंदर की चेतना बहुत विकसित होती है। इन जूनियों के बाद ये मानव की जूनी में आते हैं। ये तीन जूनियां हैं, और भी हो सकती हैं, लेकिन प्रभुपाद ने कभी कहा कि गाय के शरीर छोड़ने से सतोगुण का व्यक्ति मानव शरीर में आता है, बंदर तमोगुण का व्यक्ति बन के आएगा संसार में, और शेर की जूनी से रजोगुणी व्यक्ति आता है। तो आजकल शेर की जूनियां कम हो गई है ना, केवल सारे ही मर गए यहां बैठे हुए। और काम क्या करता है शेर? दूसरे का खून पीता है। और ये सारे दुकानदार क्या कर रहे हैं? यही काम कर रहे हैं, जो काम छोड़ के आए वही कर रहे हैं, वो बहुत कम हो गए। तो विकसित चेतना ऐसे जीवों में क्रम से विकसित चेतना होती है 84 लाख जोनियों की। तो यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य जीवन सर्व उच्च समझा जाता है, क्योंकि इसमें जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छूटने की बुद्धि रहती है। बुद्धि रहती है, उसको उपयोग में कौन करता है, ये प्रश्न है। ये जो भगवत गीता प्रभुपाद जी ने लिखा है, उसका नाम क्या है, आप सबके पास है, तो एज इट इज पढ़िए। हाँ, जैसे है वैसे ही पढ़िए कि खोलिए कभी। हाँ, असल में हमारी चेतना भी एज इट इज है, लेकिन हम उसको एज इट इज ही रखते हैं, उसको इसके लिए यूज ही नहीं करते। भगवान ने बुद्धि दी है तो उसका उपयोग करना चाहिए ना। तो मानव जीवन में जन्म मृत्यु के बंधन से छूटने का बुद्धि भगवान ने हमको दिया है, जो और किसी जूनी में नहीं होता। इसलिए मानव जूनी सर्व उच्च, देवताओं के लिए भी ये सुलभ नहीं है, सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए दुर्लभ है ये मानव शरीर। ये आपका जो शरीर हमको मिला है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता इस शरीर में आने के लिए बहुत बड़े लालायत रहते हैं, वो चाहते हैं कि ये शरीर मिले ताकि हम जन्म मृत्यु से मुक्त होकर भगवान के भक्त बन सके, तो ये शरीर इतना महत्वपूर्ण है जिसमें हम बैठे हुए हैं। गरीब किसान था, खेती करता था बेचारा, प्यासा राजा अचानक उसके खेत में सबसे बिछड़ के पहुंच गया। उसने सूखा रोटी खिलाया कुछ और कहा कि कभी तुम्हें मुश्किल पड़ जाए तो मैं राजा हूं, मेरे पास आना, तुमने मेरा जीवन बचाया है। तो एक समय तकलीफ आई, बरसात नहीं हुई, अकाल हुआ, राजा के पास आया, राजा ने पहचान लिया, उसको चंदन का बाग दे दिया पूरा। और चंदन का बाग दे दिया, वो तो बेचारा चंदन को पहचान नहीं पाता था, रोज चंदन की दो चार लकड़ियां काटता था, बाजार में लकड़ी की तरह बेचने जाते थे और बुद्धिमान जीव उसको लकड़ी के भाव में लेते थे। तो दो चार पांच छह महीना दस महीने के बाद राजा ने कहा, देखूं तो सही, इसको चंदन का बाग दिया, अभी तो सुखी होगा। वो जाके देखता है तो उसी कुटिया में रह रहा है, बाकी कुछ चंदन के पेड़ बचे हैं, सब कटे हुए। तो मंत्री को बोला, इसे पूछो क्या कर रहा है, तुम कैसे अपना निर्वाह करते हो? बोले, पांच सात लकड़ी काटता हूं, जाके बेच के आता हूं और रोटी खा रहा हूं। बोला, चंदन की लकड़ी तुम ऐसे मूर्खता से 5 रुपये किलो बेच के आता है और रोटी खाता है? उसको एक लकड़ी को दिखाया कि ये लकड़ी ले गया, पूछो कितने की? बोला, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण है, ये तो इतनी एक लकड़ी है तो मैं तो इतना सारा पूरा वन खराब कर दिया। तो ये मानव शरीर तो वो चंदन के बाग की तरह हमको मिला है, इसको भी हम लकड़ी के भाव में बाजार में बेचते रहेंगे तो फिर कंगाली रह जाएंगे। ये तो चंदन के भगवान ने ये कृपा लिखा है, भगवान ने कृपा करके, आज में इसे लिखा है ना, पूर्णम पूर्ण पुरुषम पुराणम, आपने कृपा करके ये देह दी है, ये देह आपने दी है, ये बड़ी कृपा की है। अब इसका सदुपयोग न करें और चंदन की लकड़ी को हम आग की तरह, आग में जलाने वाली लकड़ी की तरह बेचे तो ये मूर्खता है। तो ये शरीर इतना सुलभ नहीं मिलता है, बहुत दुर्लभ है। ये बार बाल मनुष्य तन पावन, बच्चों का खेल नहीं है, कई जन्मों के शुभ कर्म जब इकट्ठे होते हैं तब ये मिलता है और फिर भगवान की कृपा होती है तब मिलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शरीर है जिसमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने की बुद्धि भगवान ने दी है, जो और किसी शरीर में नहीं है। अब इसका सदुपयोग करना, ये हमारा क्या है? कर्तव्य तो कोई नहीं निभाता, ये क्या है? कोई शब्द ऐसा ढूंढिए जो आपको लगे कि ये करना ही चाहिए, ये हमारा अनिवार्य है, अनिवार्य है। ये नहीं करेंगे तो उसके लिए तो वो नीति का श्लोक जो पढ़ते हैं, कौन सा? आहार निद्रा निद्रा भय मैथुन्य पशु भी समाना। ये चार कामों को करने में लगे रहे तो पशु से और हम पशु में हमें पशु भी समान है। धर्म अधिको विशेष है, ये धर्म का मतलब भगवान ने जो शास्त्र दिए है ये धर्म है, इसको धर्म के ग्रंथ बोलते हैं और धर्म भगवान ने दिया है वो धर्म है। तो धर्मा तो साक्षात भगवत प्रणीतम, उस धर्म को जानने से मानव बनता है, नहीं तो आदमी पशु के स्तर के ऊपर ही जीता है। वैसे भी अंग्रेजी भाषा में क्या लिखा है, मैन इज ए सोशल, बड़े बुद्धिमान थे, लिखा है वो हम सोशल एनिमल हैं। प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, आजकल के आधुनिक बड़ी कोठी और बड़ी गाड़ी में घूमने वाले मानव के लिए क्या शब्द एक लिखा है, रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल। ये मानवता का बहुत, ये पशु का बहुत उच्चतर स्तर का उपयोग इनका हो रहा है, खाने पीने में बहुत मस्त है। तो हमारी बुद्धि विशेष किस काम के लिए दी गई है? जन्म मृत्यु से छूटने के लिए। आप सोचिए कि आपकी बुद्धि को आप इस काम के लिए यूज करते हैं और कितना समय करते हैं, दिन में 24 घंटे में, एक साल में, 80 साल की आयु में, 100 साल की आयु में कितना समय इस काम के लिए यूज करते हैं, कितना समय दूसरे काम के लिए यूज करते हैं, जरा ये भी हिसाब कभी कीजिए, नहीं तो बुद्धि एज इट इज रह जाएगी। ठीक है, अब दूसरी लाइन को पढ़ते हैं आगे। माता के गर्भ में स्थित भाग्यवान शिशु अपनी श्रेष्ठ स्थिति को समझता है और इस तरह वो अन्य प्राणियों से पृथक होता है। मनुष्य से नीचे के पशुओं में सुख दुख की चेतना रहती है, किंतु वे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं, खाना, सोना, संभोग तथा सुरक्षा से अधिक और कुछ नहीं सोच पाते, किंतु ईश्वर की कृपा से मनुष्य में चेतना इतनी विकसित रहती है कि वो अपनी अद्वितीय स्थिति का मूल्यांकन कर सकता है और आत्मा तथा परमात्मा दोनों का साक्षात्कार कर सकता है। तो हम कौन से शरीर में है, तो हमने आत्मा तथा परमात्मा का साक्षात्कार किया, तो हम कौन से स्तर पे हैं अभी? हाँ, हरे कृष्ण। अपने ऊपर जब तक ये नहीं लगाओगे, ये समझोगे दूसरों के लिए है, तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। अपने को देख लो कि हम कम से कम इस रास्ते पे चल रहे हैं, आप नहीं, आप भागवत सुन रहे हैं, आप निश्चित रूप से ये प्रयास कर रहे हैं आत्मा, भगवान और उनका संबंध और उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। आप साधना में लगे हुए हैं, साधक हैं, या आप तो भाग्यशाली हैं कि आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग कर रहे हैं दुनिया में, कितने लोग कर रहे हैं? हजारों में से कोई एक। बहुत, आप तो बड़े उधार है, इस हिसाब से आप दान देना शुरू करें तो हम किसी से और से नहीं मांगेंगे। आपकी जितनी संपत्ति है, मानो 1000 रुपया है तो 1 रुपया दीजिए, तो आपकी कितनी संपत्ति घर मार वो गिन लीजिए, उसका वही 1000 में 1 के हिसाब से दे दीजिए। नहीं देगा कोई, 1000 में 1% तो कोई नहीं देता, देता कोई? हाँ, हरे कृष्ण। अच्छा, 1000 में से कहा, तो 1000 में से फिर लाख बड़े लाख में चले जाओ ना। कोटि मध्य कोई दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, कोटि मध्य करोड़ों में कोई एक होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपके ऊपर दायित्व है कि ये आप समझते हो तो दूसरों को जाके समझाओ। ये काम आपको करना है। जो अपने लिए मुक्ति का साधन करता है वो मुक्त नहीं हो सकता। जो स्वयं को मुक्त करके दूसरों को मुक्त करता है, उसी को ही केवल भगवान की प्राप्ति होने का संभावना है और किसी को नहीं। ये किसके वचन है? चैतन्य महाप्रभु के। क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? भारत भूमि ते होइला मनुष्य जन्म या। आपका जन्म कहां हुआ? भारत भूमि पे हुआ ना। वैसे ये पूरा पृथ्वी भारत भूमि है, अभी बेचारा टुकड़ा छोटा छोटा होते होते ऐसे भारत छोटी होती जा रही है, नहीं तो 50 साल पहले तो जो अभी पाकिस्तान कहते हैं, बांग्लादेश कहते हैं, ये भारत था कि नहीं था? उससे थोड़ा पहले बर्मा भारत में था कि नहीं था? उससे पहले ही ये भारत की सीमा, तो ये पूरी दुनिया ही भारत थी। इसका भारतवर्ष नाम तो इस पूरी धरती का था, केवल इसने छोटे टुकड़े का नहीं था। कृष्णकालीन भारत कितनी बड़ी थी, वो कंधार से गंधारी को लाए थे भीष्म पितामह, तो वो भी तो भारत में था, अफगानिस्तान कहीं दूर नहीं। और यहां जितना आगे जाएंगे तो पुरानी संस्कृति सारी यहां से मिली हुई है, कोई दूर नहीं। तो कम से कम अब आज भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, तो आपका मनुष्य जन्म भारत भूमि में हुआ है कि नहीं हुआ है? तो अब भगवान का आदेश क्या है? जन्म सार्थक करो, जन्म सार्थक करो मतलब जन्म मृत्यु से मुक्त होके आत्मा परमात्मा के तत्व को जानू और जीव के स्वरूप भगवान कृष्ण की भक्ति को करने शुरू करो। ये जीवन सार्थक हुआ बोला करके फिर क्या करें, प्रसाद खा के सो जाएं? बोला नहीं, कर पर उपकार, दूसरों का भला करो, दूसरों का भला करो। ये दिसंबर का महीना आ रहा है, सबसे अच्छा दूसरों को भला करना है, तो ये भगवत गीता आप कम से कम, आप कितनों का भला करना चाहते हो ये बोलो, कितने एक आदमी कितनों का भला करना चाहता है? हाँ जी, बहुत अच्छा, कम से कम 50, शुरुआत अच्छी हुई 50 का। हाँ 50, एक आदमी 50 करे, हम कितने आदमी यहां बैठे हैं, 550 का करो गुणा। हाँ 25,000 आज ही करें, जय ओ 30 पड़ी है 5 के लिए, कल किसी को बुलाना पड़ेगा। ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल आप कुछ करोगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। जब तक आप अपने आप स्वयं सेवा नहीं करोगे तब तक कृपा नहीं आएगी। अपने लिए हरे कृष्ण जपो अच्छा है, लेकिन जप के मांगते क्या हो? सेवा। और ये सेवा भगवान श्री कृष्ण ने दी है कि इस भगवत गीता का उपदेश जो दूसरे को करता है वो मुझे प्रिय है, तो यही तो काम करना है, यही तो काम करना है, यही तो जप करने वाला जब पुस्तक वितरण करके अथवा दूसरों को पुस्तक की शिक्षा देने शुरू करता है, इसका मतलब उसके जप के अनुसार भगवान ने उसको उसको सेवा में लगाया। और जो ये नहीं करता इसका मतलब अभी तक उसकी एप्लीकेशन फाइल में पड़ी है। आप समझ रहे हैं? आप किसी को प्रार्थना पत्र देते हैं तो कहते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट भी मिलनी चाहिए और सेवा में भी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो हरे कृष्णा जपते हैं ये तो एप्लीकेशन रोज देते हैं, लेकिन सेवा नहीं करेंगे इसका मतलब अभी तक अनएम्प्लॉयड हैं। लोग सारी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट की परेशानी है ना, तो असल में हम सारे अनएम्प्लॉयड हैं जब तक सेवा न करेंगे स्वयं। ईमानदारी से बोलो कि दिसंबर में एक दिन में एक गीता वितरण करने का परिश्रम करोगे? 30 दिन में 30 गीता, इतना तो कम से कम करो। एक महीना कार्तिक से जो आपको यहां से भगवान के भक्ति से कीर्तन से प्रसाद से पुष्ट किया जा रहा है, पुष्टिक किया जा रहा है, इसको दिसंबर में जाके पुस्तक वितरण करके और उसका आप कर्जा चुकाइए। हाँ ये तो भगवान का सब खा रहे हैं, हमारा किसी का नहीं है, ये तो भगवान प्रसाद। ये वो जो बाहर बैठा है कूपन वाला कुछ पैसा मांगता है क्या? 3-4 दिन से कुछ नहीं मांगता है बेचारा, ऐसे ही रख के बैठा है कि ये पड़ा है, डालना है तो डालो, नहीं तो नहीं डालो। और हम तो इतने होशियार हैं कभी नहीं डालना चाहते। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं सच्चा। ये जो मंदिर के सामने 3-4-5 पेटियां रखी हैं, इसका नाम क्या है? भगवान के भिखारी के दान चाहिए उसको। हाँ भगवान के पास कुछ नहीं है, लक्ष्मी उसके साथ और सहस्र लक्ष्मियों की अधिष्ठात्री राधा रानी उसके साथ खड़ी है, उसको आपका कोई फटा हुआ नोट चाहिए क्या? हा? इसका नाम है प्रणामी। क्या नाम है? इसका मतलब जो दंडवत प्रणाम करता है उसको उसके अंदर कुछ डालना चाहिए। पहले जमाने में चांदी सोने के सिक्के होते थे, घंटी बाहर बजाने से वो खड़का करना भगवान को ज्यादा सुनाई देता है, जो उसमें जा गिरता है ना खड़क, भगवान कहते आया आया कोई प्रणाम कर रहा है। कोई प्रणाम कर रहा है उसका पता लगता था। सबसे ज्यादा प्रणाम भक्त करते हैं और सबसे ज्यादा भक्त हाथ भी नहीं लगाते हैं पेटी को, बाहर के प्रणाम नहीं करते हैं, पेटी में डालते हैं। तो वो प्रणामी का उसका भी अर्थ, उन्होंने प्रणाम किया नहीं डाला तो भी कोई काम नहीं बना, और हमने प्रणाम किया और नहीं डाला तो भी काम नहीं बना। बस सिर्फ गिनने वाले को परिश्रम है, यहां बैठ के गिनते हैं और कुछ भी नहीं। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? प्रणाम ही उसका नाम है। हमेशा पुराने लोग ऐसे थे कि कुछ चेंज जेब में रखते थे, जब मंदिर में जाए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, एक फूल ले जाना चाहिए, पहले अन्न ले जाते थे लोग थोड़ा सा जाके दे देते, घी ले जाते थे कि दीप में डलेगा। खाली हाथ मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए, साधु के पास भी नहीं जाना चाहिए, वैद्य के पास भी नहीं जाना चाहिए, ब्राह्मण के पास भी नहीं जाना चाहिए, ये शास्त्र का नियम है। हम तो खैर मंदिर में रहते हैं, लेकिन जनरल मैं बात ये कह रहा हूं कि ये जो सेवा हो रही है यहां, ये सेवा आपको आध्यात्मिक पुष्टि के लिए है, ताकि आप भगवान की सेवा में लग सकें। इसका ऋण ऐसे उतारे कि दिसंबर में जाके गीता का वितरण करें तो आपका यहां आना सार्थक हुआ और भगवान आपको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये मेरे धाम में आया, मैंने इनको सेवा दी और उन्होंने सेवा की। ये समझ में आ रही है बात? ये प्रैक्टिकल करके देखो, फिर आपके जीवन में देखो कि आपको अनुभव होने लगेगा, नहीं तो अनुभव नहीं होगा। जब तक स्वयं नहीं करेंगे तब तक अनुभव नहीं होगा। तो आइए दो चार लाइनें पढ़ के। दम शरीरी शब्द का अर्थ है कि हमें ऐसा शरीर प्राप्त हुआ जिसमें हम इंद्रियों तथा मन को वश में कर सकते हैं। भौतिक जीवन की सारी जटिलता अनियंत्रित मन तथा अनियंत्रित इंद्रियों से है। जितनी इस दुनिया में समस्याएं हैं उसका एक ही कारण है, मन और इंद्रियां संयम में नहीं है। जिसकी मन और इंद्रियां संयम में है उसके लिए कोई संसार में परेशानी दुख जटिलता है ही नहीं। और यह शरीर हमको इसीलिए मिला है कि हम इसको मन और इंद्रियों को संयम में करें। मनुष्य को शरीर की प्राप्ति कृतज्ञता ज्ञात करनी चाहिए कि उसे ऐसा सुंदर मनुष्य का शरीर मिला है, उसे इसका सही सही उपयोग करना चाहिए। पहले तो भगवान की कृतज्ञता करनी चाहिए। बाहर लाइन लग गई है? नहीं नहीं है। देखो मैनेजमेंट के जो प्रसाद लाइन वाले हैं वो जो कथा सुन रहे हैं उनको पीछे के गेट से पहले अंदर बिठाना चाहिए, जो लाइन वाले हैं उनको लास्ट में, ठीक है? कि कोई बात तो कम से कम कथा सुनने वालों को प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्या बात? ये इस गेट से निकालो, पीछे वाले गेट से अंदर लाओ, पहले प्रसाद खिलाओ, लाइन वाले को थोड़ा हवा खाने दो। लेकिन होता उल्टा है कि कथा सुनने वाले हवा खाते हैं। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि पहले तो भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि आपने हमको मनुष्य शरीर दिया, बड़ी कृपा की है। पहले कृतज्ञ होना चाहिए। हाँ, इतना सारा सुंदर शरीर कितना दिया है भगवान ने, कितना बड़ा परफेक्ट बनाया है, आप उसको जरा देख लीजिए। इतना सुंदर भगवान ने शरीर बनाया है, उसके लिए भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि आपने बड़ी कृपा की है। और ये मानव शरीर भगवान ने, गॉड हैज मेड द मैन ऑन हिज ओन इमेज, भगवान ने अपने आकार का रूप हमको दिया है। जैसा भगवान श्याम सुंदर का द्विभुज रूप है, ऐसा ही मानव शरीर हमको दिया है। और ब्रह्मा जी ने जब दूसरे शरीर सब बनाए तो बनाए, बोला ठीक है इसको जाने दो, लेकिन मानव शरीर बनाए, बोला ये अच्छा है, ये परफेक्ट है, इससे भगवान की प्राप्ति होना संभव है। तो आप सोच लीजिए कि आप दूसरे किसी से शरीरों को देखते हैं, कुत्ते बिल्ले घोड़े गधे को, तो कैसे लगता है? उसका कोई इंपॉर्टेंस आपको लगता है? तो कभी उस शरीर में हम रहे होंगे तो हमारे को दुनिया ने कैसे देखा होगा? तो अब तो कितना बड़ा महत्वपूर्ण शरीर है। तो पहले तो भगवान की कृतज्ञता ऐसे क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या कृतज्ञा, आभार प्रकट करना चाहिए भगवान की कृतज्ञता। और फिर ऐसे सुंदर मनुष्य शरीर को मिला है, उसे उसकी सही सही उपयोग करना चाहिए। पशु तथा मनुष्य की यही अंतर है कि पशु अपने आप को वश में नहीं रख सकता, पशु अपने आप को वश में नहीं रख सकता, उसमें शिष्टता का भाव नहीं रहता, जबकि मनुष्य में शिष्टता का भाव रहता है, डिसेंसी। पशु में डिसेंसी नहीं रहती, मानव में डिसेंसी रहती है। कल मुझे कोई कह रहा था, आप में से मुंबई वाले कितने हैं, आप लोकल ट्रेन में जब चढ़ते हैं तब आप पशु से कम होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं स्टेशन पे, गाड़ी रुकी नहीं, झपक के चढ़ना है, पकड़ना है, लटकना है, दूसरे के ऊपर पांव देना है और अंदर जाना है। कुछ दिन हम रहे और हमने देखा कि कई जूनियां यहीं बदलनी पड़ेंगी, चलो वृंदावन हम छोड़ के चले। मैं बंबई छोड़ के आया, उसका एक ही कारण था, लोकल ट्रेन। रोज हिरणाकश बनना पड़ता था, दोनों हाथों से टंगा हुआ जाओ, दोनों हाथों से टंगा हुआ। हरे कृष्ण। तो पशु में डिसेंसी नहीं है। दूर मत जाइए अपनी इस लाइन में, बूढ़ों को आगे जाने देते हो आप, माताओं और बच्चों को आगे जाने देते हो, नहीं, प्रसाद की लाइन में भी डिसेंसी नहीं है हमारी। नहीं, मैं सच कह रहा हूं कि मानवता खत्म होती जा रही है, स्तर पशुता का आ रहा है। पहले पहले बस में कोई आदमी स्त्री आती तो आदमी उठ के खड़ा होकर जगह देता था, ये मर्यादा होती थी। हम तो मरने के बाद भी जगह नहीं है, कब्रिस्तान भी बिक रहे हैं, मरने के बाद भी जगह नहीं है, कई कई बड़े कब्रिस्तान बिक गए, बहुत बड़ी समस्या है। हा? जो ये एक शिष्टता जो है ये पशु में नहीं हो सकती है, ये मानव में है। यदि मनुष्य इस नियंत्रण शक्ति को प्रदर्शित नहीं कर पाता तो वो पशु के तुल्य है। इंद्रियों के नियंत्रण का या योग विधि से मनुष्य स्वयं को, परमात्मा को, संसार को, अपने आप को, परमात्मा को, संसार को तथा सबके पारस्परिक संबंध को समझ सकता है। इंद्रियों के नियंत्रण से सब कुछ संभव है, अन्यथा हम पशु तुल्य हैं। यहां भावार्थ पूरा नहीं हुआ, आगे पढ़ते हैं। यहां पर इंद्रियों को नियंत्रण द्वारा आत्म साक्षात्कार की व्याख्या की गई है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान तथा अपने यानी आत्मा को भी देखने का प्रयत्न करे। अपने को परमेश्वर समझना आत्म साक्षात्कार नहीं है। यहां ये स्पष्ट बताया गया है कि परमेश्वर अनादि या पुराण है और उसका कोई अन्य कारण नहीं है। पुरुषम पुराणम, पुराणम का मतलब उससे पहले पुराना और कोई नहीं है। तो भगवान पुरुषम पुराणम है और इसी बात की पुष्टि जीव भगवान के अंश के रूप में है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है अनादिर आदिर गोविंदा, परम पुरुष गोविंद का कोई कारण नहीं है, वे अजन्मा है किंतु जीवात्मा उसे उनसे उत्पन्न हुआ है। भगवत गीता में पुष्टि की गई है, ममेवंश जीवलोके, जीव तथा परमेश्वर दोनों अजन्मा है, किंतु ये जान लेना चाहिए कि अंश का परम कारण भगवान है। अत ब्रह्म संहिता कहती है कि प्रत्येक वस्तु भगवान से उत्पन्न हुई है, सर्व कारण कारणम। वेदांत सूत्र भी यही कहता है, जन्मादियस्य यत, परम सत्य ही हर एक के जन्म का मूल है, मूल स्रोत है। भगवद गीता में भी कृष्ण का कथन है, अहम सर्वस्य परभव, मैं हर वस्तु का जन्म स्रोत हूं जिसमें ब्रह्मा शिव तथा अन्य जीव सम्मिलित हैं। ये आत्म साक्षात्कार है। मनुष्य को जानना चाहिए कि ये परमेश्वर को के अधीन है। उसे अपने को परम स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए, अन्यथा उसे बद्ध जीवन में क्यों रखा जाता। अगर वो अपने आप को स्वतंत्र न समझता कि भगवान का दास हो तो वो बद्ध जीवन में क्यों होता। तो ये प्रभुपाद ने कुछ शास्त्रों से एक बात बताई है। तो इस श्लोक में दो चीजों के ऊपर प्रभुपाद ने विशेष रूप से, तीन चीजों के ऊपर हमको शिक्षा दी है। पहली के चेतना की विकसितता केवल मानव शरीर में होती है, दूसरों में नहीं, जैसे फूल उदाहरण दिया। और दूसरा, यह शरीर हमारा जो मानव है इसमें हम इंद्रियों और मन को संयम में कर सकते हैं, जो पशु शरीर में नहीं कर सकते। और दूसरा, पुराणम पुरुषम, कि भगवान पुरुषम पुराणम है। कृष्ण, ये भागवत में आप पढ़ेंगे तो व्यास देव को जब दिखा तो पहले लिखा है पुरुषम पुरुषम, पुरुषम पुराणम को देखा, फिर लिखा है अधोक्षजे को देखा, और तीसरे में लिखा है वही कृष्ण भगवत, वही भगवान श्री कृष्ण को देखा। तो पूर्ण पुरुषम, पूर्ण पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। वो उससे हम सब निकले हैं। तो उसको जानना, हमको अपने आप को जानना और इस भौतिक जगत को जानना, ये साक्षात्कार है। ये कर लेना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो तीसरी बात प्रभुपाद ने इस श्लोक में पूर्ण पुरुष शब्द की व्याख्या की है। तो तीन बातें हमको आज समझनी चाहिए कि हम मानव बने हैं तो हमारी चेतना विकसित है, हमें जन्म मृत्यु से छूटने का बुद्धि दी है भगवान ने, तो हमको स्वयं को भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए और भगवान से सेवा मांगनी चाहिए और सेवा करनी चाहिए। ये विशेष आज हमारे लिए शिक्षा है, मानव शरीर हमको प्राप्त हुआ है। तो बाकी आप सब जानते हैं कृष्ण परम पुरुष भगवान है, ये तो मुश्किल नहीं है। कृष्ण भावना में ये सब पहले दिन सिखाया जाता है, लेकिन सेवा का भाव आने में बहुत समय लगता है। सेवा करना, शुरू करना और सेवा के भाव आने में बहुत समय लगता है। तो जितना जल्दी सेवा करना शुरू करोगे उतनी ज्यादा आपकी और हमारी प्रगति होगी, उन्नति होगी और आध्यात्मिक हमारी अनुभव बढ़ेंगे। इन शब्दों के साथ यहां आज की वाणी को विराम देते हैं। जीवात्मा की ये प्रार्थना है। इसके बाद जीवात्मा कहता है मैं कष्ट भोग रहा हूं, यहां से मुझे भगवान निकालो, और तब भगवान बाहर निकाल देंगे मां के गर्भ से। लेकिन बाहर आके क्या चमत्कार करेगा, वो सब हम कर रहे हैं, वैसे ही करेगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद।